श्रीला भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वर्णन करते हैं कि भक्त विनोद ठाकुर गदाधर पंडित के एक विस्तारित अंश हैं, और गदाधर पंडित का आविर्भाव और तिरोभाव दोनों अमावस के दिन हुआ। तो इसके पीछे परम पूज्य कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज बहुत टिप्पणी करते हैं कि गदाधर पंडित का जीवन केवल महाप्रभु को संतुष्ट करने में गया, और गदाधर पंडित के मन में महाप्रभु को अपनी दृष्टिकोण से कुछ सेवा करने की इच्छा होती तो महाप्रभु ने कभी उसे स्वीकार नहीं किया। तो इसलिए गदाधर पंडित को महाप्रभु के निरंतर छाया में रहना पड़ता था, और क्योंकि वो निरंतर इस प्रकार छाया में थे, यहाँ तक कि जब जगन्नाथपुरी में महाप्रभु थे, जगन्नाथपुरी से वृंदावन जाने का प्रयत्न आरंभ किए तो गदाधर पंडित तबे संगेते चलीला, साथ में वो भी चलने लगे, और महाप्रभु उनको मना करने लगे, कहने लगे प्रतिज्ञा सेवा छाड़ी आमाय लागे दोष, आप अगर प्रतिज्ञा और सेवा छोड़ दोगे तो फिर सब लोग मुझे दोष देंगे। क्यों ये आप मेरे को भी लगा नहीं के बोलने के लिए, तो ये हर भक्त के जीवन में दो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, एक है उनकी प्रतिज्ञा और एक उनकी सेवा। तो गदाधर पंडित ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी के प्रांगण को कभी छोड़ेंगे नहीं, क्षेत्र संन्यास उनकी प्रतिज्ञा थी, और उनकी सेवा थी टोटा गोपीनाथ जी के चरण कमलों में। तो इसलिए प्रतिज्ञा और सेवा दोनों वो त्यागने के लिए तैयार नहीं थे, और अब अचानक महाप्रभु को जाते देखकर वो दोनों भूल गए। तो महाप्रभु कहने लगे अगर आप ऐसा करोगे तो लोग आपके पदचिन्हों में चलते हुए धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे, इसलिए आप यहीं पर जगन्नाथपुरी में ही टोटा गोपीनाथ की सेवा करो। धर्म प्रभु लागी धर्म कर्म छाड़े भक्तगण, भक्त धर्म हानि प्रभु न होए सहन। तो कहा गया है कि महाप्रभु के संग के लिए भक्त लोग इतने आतुर थे कि धर्म और कर्म अपनी सेवा अपनी प्रतिज्ञा सब कुछ छोड़कर महाप्रभु के साथ चलने के लिए तैयार थे, लेकिन भक्त धर्म हानि प्रभु न होए सहन। महाप्रभु को ये सहन नहीं था, और इसलिए महाप्रभु ने बड़े कठोर शब्दों से और कठोर तरीके से गदाधर पंडित का अपने साथ चलना रोक दिया, मना कर दिया। गदाधर पंडित श्रीमती राधारानी से अभिन्न हैं, लेकिन अपने संपूर्ण जीवन काल में श्रीमती राधारानी कभी वृंदावन नहीं जा पाई। तो ये महाप्रभु की विशेष अद्भुत लीला थी कि गदाधर पंडित को महाप्रभु ने अपने निर्देश और अपने आदेश के अनुसार उनसे कार्य करवाया, और तत्पश्चात गदाधर पंडित जब जाजपुर से महाप्रभु आगे निकले बंगाल की ओर जाते हुए वृंदावन के लिए, तो महाप्रभु को जाते देखकर गदाधर पंडित वहीं अचेत अवस्था में नीचे धरती पर गिर पड़े। फिर महाप्रभु किसी कारणवश जा नहीं पाए, सनातन गोस्वामी के कहने पर पुनः लौट के आए जगन्नाथपुरी, और तब गदाधर पंडित को देखकर महाप्रभु ने कहा कि क्योंकि मैंने गदाधर पंडित के हृदय को तोड़ दिया इसलिए कृष्ण मुझे वृंदावन नहीं जाने दिए। तो इस प्रकार फिर महाप्रभु वृंदावन जब गए बलभद्र भट्टाचार्य को लेकर, तभी भी गदाधर पंडित साथ में नहीं थे, फिर जब गदाधर पंडित जब महाप्रभु पुनः 18 वर्ष तक वृंदावन में जगन्नाथपुरी में रहे, तो तब से लेकर 1516 से लेकर 1534 ये 18 वर्ष की अवधि गदाधर पंडित महाप्रभु के साथ रहे, लेकिन महाप्रभु गंभीरा रहते थे, गदाधर पंडित टोटा गोपीनाथ में रहते थे, और महाप्रभु श्रीमती राधारानी के भाव में कृष्ण के विरह में जब आतुर होते तो जिस प्रकार हरे कृष्ण, जिस प्रकार इस जगत में कोई प्रेमी अपने प्रेमिका से दूर हो जाए, उसका संग टूट जाए, दिल टूट जाए, तो कभी कभी ऐसी अवस्था में लोग पागल होकर आतुर होकर मदिरालय में जाते हैं, दारू पीते हैं और उस अवस्था में अपने शोक को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। उसी प्रकार महाप्रभु राधा रानी के भाव में, कृष्ण के विरह में आतुर होकर इतने पीड़ित थे कि मुझे कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा, कृष्ण का संग नहीं हो रहा। उनके उस शोक पीड़ित अवस्था में जैसे शोकाकुल व्यक्ति इस भौतिक जगत में किसी मदिरालय में जाता है, किसी बार में जाता है और उसे फिर वहाँ पर दारू पिलाते हैं, उसी प्रकार महाप्रभु जाते थे गदाधर पंडित के पास इस आशा से कि गदाधर पंडित हमें कुछ शोक पीड़ा दूर करने के लिए कुछ पिलाएंगे। और तब गदाधर पंडित महाप्रभु को श्रीमद् भागवत का पीयूष रस पिलाते थे। और इसलिए भागवत में वर्णन किया गया है कि हित्वा श्रितांस्ते चरणात पत्रम कि परस्परम त्वत गुणवाद सीधु पीयूष, अर्थात भागवत के कथाओं के अंदर इतनी शक्ति है कि वो न केवल इस भौतिक जगत की पीड़ा को मदिरा की भांति दूर कर सकता है लेकिन गोलोक वृंदावन में भगवान के नित्य लीला में प्रविष्ट कराने के लिए अमृत भी बन सकता है। तो ये भागवत का संदेश मदिरा और अमृत दोनों के साथ इसकी तुलना की गई है। और तब कई कई घंटों तक गदाधर पंडित महाप्रभु को उनके शोक को दूर करने के लिए भागवत का ये ज्ञान देते थे। और इसीलिए महाप्रभु ने कभी गदाधर पंडित को उनकी क्या इच्छा है ये नहीं पूछा, हमेशा गदाधर पंडित को अपने इच्छा के अनुसार अपने सुख दुख में सहायक बनाकर उनको रखा। और इसलिए भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा अपनी किरणों को चारों दिशाओं में आलोकित करता है लेकिन चंद्रमा 14 दिन में पूर्णिमा के दिन सबसे अधिक अपने किरणों को प्रकाशित करता है और अमावस के दिन चंद्रमा भले उपस्थित है लेकिन चंद्रमा के किरणों को हम देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह आच्छादित हो गया है, द मून इज कंप्लीटली कवर्ड। उसी प्रकार गदाधर पंडित उनके हृदय में उनकी इच्छाओं के चंद्र को श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी इच्छा से पूरी तरह परछाई के रूप में आवृत कर दिया था, ढक दिया था। और इसलिए गदाधर पंडित कभी अपने उन इच्छाओं को व्यक्त करने का साहस भी नहीं किए, केवल महाप्रभु की परछाई बनकर चलते रहे। इसलिए गदाधर पंडित के भक्ति के भाव को अमावस के चंद्र के साथ तुलना की गई है। और क्योंकि उनका संपूर्ण जीवन केवल महाप्रभु की इच्छा को सपोर्ट करने में गया और उन्होंने स्वयं अपने कोई इच्छा प्रकाशित नहीं की, इसलिए गदाधर पंडित जी का आविर्भाव आप वैष्णव कैलेंडर में देखोगे, आविर्भाव भी अमावस के दिन हुआ है और तिरोभाव भी अमावस के दिन हुआ है। और आज अमावस है, गदाधर पंडित का तिरोभाव दिवस। उसी भाव में उनके एक विस्तारित अंश श्रील भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर वर्णन करते हैं कि ठाकुर भक्ति विनोद गदाधर पंडित के ही विस्तारित अंश हैं। और उन्होंने कुछ सुंदर श्लोकों में इसका वर्णन किया, वो मेरे चौपाटी के डायरी में वो सब है, तो वो श्लोक मेरे पास अभी नहीं है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर भी गदाधर पंडित का ही भाव लेकर प्रकट हुए। और वो कि कैसे महाप्रभु के इस मिशन को, महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन को पूरे विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के पश्चात षड गोस्वामी और षड गोस्वामियों के पश्चात नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद, तत्पश्चात बलदेव विद्याभूषण और उसके बाद हम देखते हैं चक्रवर्ती पाद और ये सब होने के बीच लगभग 1750 और 1850 के बीच में गौड़ीय संप्रदाय में एक वैक्यूम जैसा आ गया। और उस समय बंगाल में विशेष रूप से अलग अलग प्रकार के भक्ति के नाम पर अपसंप्रदाय प्रसिद्ध हो गए। यहाँ तक कि श्री चैतन्य चरितामृत का जो ओरिजिनल कॉपी था वो भी लुप्त हो गया था। और उस समय तीन महत्वपूर्ण आचार्यगण हमारे संप्रदाय में प्रकट हुए। आचार्य त्रय वो है भक्ति विनोद ठाकुर, फिर उनके पुत्र श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और फिर कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। इन तीनों के समन्वय से, इन तीनों के कोलैबोरेशन से वास्तव में महाप्रभु की जो इच्छा पृथ्वी ते आचे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, ये महाप्रभु की वाणी सार्थक हो सकी। क्योंकि हरेक ने अपना एक एक रोल अदा किया और महाप्रभु के मिशन को एक स्टेप आगे बढ़ाया, और तब जाकर आज हम यहाँ बैठकर इस्कॉन के 600-700 मंदिरों के बीच, इतने भक्त समूह के बीच भक्ति का कार्य कर पा रहे हैं। क्योंकि इतिहास में कुछ लोगों ने अपने समय में इतना अधिक प्रयत्न किया जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आनंद चंद्र दत्त और जगन मोहिनी के पुत्र सितंबर 2 तारीख 1838 में बीरनगर नदिया डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ। और इनके जो बचपन में पिताजी बड़े धनाढ्य थे, संपन्नता से पूर्ण थे, लेकिन कुछ समय के पश्चात उनके परिवार में बहुत गरीबी आ गई। और उस समय से लेकर जब तक उन्होंने शिक्षा समाप्त नहीं की, उनके जीवन में शारीरिक रोग, हर प्रकार की पीड़ा, और कितने ही बार उन्होंने स्थान परिवर्तित किया उड़ीसा और बंगाल के बीच में, उसका विस्तृत जानकारी सेवंत गोस्वामी नाम के ग्रंथ में आप पढ़ोगे। थोड़ा बढ़ाना वॉल्यूम। वास्तव में 1896 में 1896 ठाकुर भक्ति विनोद ने अपने पुत्र ललित प्रसाद को एक पत्र लिखा। तो उनके 11 बच्चे थे, उनमें से एक थे ललित प्रसाद, और जिनके साथ प्रभुपाद जी भी बहुत अच्छा संपर्क किए जब 1971 में अच्युतानंद स्वामी और ये लोग सब मिलकर बंगाल में मायापुर और कलकत्ता में प्रचार आरंभ किए। तो ललित प्रसाद ठाकुर जो थे ये भी काफ़ी ठाकुर भक्ति विनोद के निकट के पुत्र थे। तो उनको ठाकुर भक्ति विनोद ने एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा। उस पत्र में, केवल एक ही पत्र में, उन्होंने अपने बचपन से लेकर 1896 तक 1898 के बीच में उनका जीवन कैसे चला, इसके विषय में उन्होंने सारी विस्तृत जानकारी दे दी। मतलब उन्होंने अपनी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, एक पुत्र को लेटर के रूप में दे दिया। उसका नाम हो गया स्वलिखित जीवनी। तो उस स्वलिखित जीवनी के कुछ कुछ भाग को लेकर फिर रूपविलास दास प्रभुपाद जी के शिष्य ने सेवंत गोस्वामी नाम का बुक लिखा है। और अभी तक स्वलिखित जीवनी का इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड पब्लिकेशन नहीं हुआ, लेकिन भक्तिवेदांत रिसर्च सेंटर कोलकाता के सौजन्य से अब लगभग 6 स्कॉलर्स का टीम इस कार्य को आरंभ किया है और आधा काम हो चुका है। और लगभग अगले वर्ष गौर पूर्णिमा तक आशा है कि स्वलिखित जीवनी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर, विल बी पब्लिश्ड बाय मंडला पब्लिकेशंस एंड भक्तिवेदांत रिसर्च सेंटर एंड अवेलेबल फॉर डिवोटी कम्युनिटी इन द इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सूचना आप सभी को देना था कि आप सभी प्रार्थना करें, और ठाकुर भक्ति विनोद के चरणों में भी हम प्रार्थना करते हैं कि ये कार्य निर्विघ्न हो। क्योंकि कोई स्कॉलर कलकत्ता में बैठे हैं, कोई अमेरिका के एक शहर में बैठे हैं, कोई लंदन में बैठे हैं, सब अलग अलग जगह बैठे हैं, और लेकिन एक कार्य चल रहा है, तीव्रता के साथ चल रहा है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि ठाकुर भक्तिविनोद जो उस समय बंगाल के समाज के इतने बड़े अग्रगण्य नागरिक रहे और ब्रिटिश सरकार के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रहे, उनके विषय में विश्व में इतनी जानकारी नहीं जितनी होनी चाहिए। तो इसलिए एक अमेरिकन एकेडमिक स्कॉलर जो भारतीय हैं, उन्होंने लिखा कि जो हिंदू सनातन धर्म है उसको समझने के चार पहलू हैं। देर आर फोर वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू नो आवर हिंदू हेरिटेज, वैदिक हेरिटेज ऑफ सनातन धर्म। तो पहला है इनसाइडर इनसाइडर, अर्थात जो हिंदू कुल में जन्म लिए हैं, जैसे हम लोग अधिकांश हिंदू हैं और हम ही इस हिंदू धर्म को समझने का आपस में प्रयास करें, तो जब एक हिंदू दूसरे हिंदू को हिंदू धर्म के विषय में बताए उसको कहते हैं इनसाइडर इनसाइडर एक्सचेंज। फिर दूसरा आउटसाइडर आउटसाइडर, अर्थात अंग्रेज लोग आए, अंग्रेज लोग ने बाहर से आकर हिंदू धर्म क्या है इसको समझने का प्रयास किया, इसके तत्व क्या हैं, हमारे शास्त्र क्या हैं, इसको गहराई से समझने का प्रयास नहीं किया। जगन्नाथ रथ यात्रा को देखा, इतनी भीड़ है, तो उन्होंने जगन्नाथ का नाम बदल के जगरनॉट कर दिया और उनको लगा ये ऐसा कोई एक उत्सव है जिसमें लोग मरने आते हैं। अपने हिसाब से इतने सारे उन्होंने अनाप शनाप जगन्नाथ को आलोचना करते हुए क्या कुछ लिखा। तो वो लोगों ने भारत के विषय में इतना कुछ और हिंदू धर्म के विषय में इतना कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिया, तो उसको कहते हैं आउटसाइडर आउटसाइडर। बाहरी दृष्टि से वो आए और न पालन किया, वो स्वयं क्रिश्चियन ही रहे, लेकिन हिंदू धर्म के विषय में उन्होंने टिप्पणी की, कमेंट्री दिया। सो दैट्स एन आउटसाइडर आउटसाइडर पर्सपेक्टिव। दूसरा है आउटसाइडर इनसाइडर पर्सपेक्टिव। तीसरा वो क्या कि ब्रिटिश लोगों ने फिर कुछ ऐसे लोगों को खड़ा किए कि भाई आप भी हिंदू धर्म को समझो और स्कॉलर बनो, और ऐसे कई इंडोलॉजिस्ट पैदा किए और वो भारत में रहकर संस्कृत को पढ़े समझे, क्योंकि लोग कहने लग रहे आप तो अनाप शनाप कुछ भी बक रहे हो हमारे धर्म के विषय में, आप क्या जानते हो संस्कृत का, आपका एक भी उच्चारण आपके जीवा पर होगा क्या कभी। तो ऐसे उनकी जब आलोचना होने लगी तो उन्होंने कहा नहीं हमको इसमें घुसना पड़ेगा। तो इसलिए वो लोग प्रवेश किए और कई स्कॉलर खड़े किए, लेकिन इनके अंदर सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं थी, केवल भाषा के ज्ञान को पकड़ लिया, हृदय के अंदर से वो आउटसाइडर ही रहे, लेकिन फिर भी संस्कृत वगैरह जानकारी लेकर वो वेद और जितने शास्त्र हैं इत्यादि उसके ऊपर अंग्रेजी भाषा में उन्होंने अनुवाद करके ग्रंथ प्रस्तुत करना आरंभ किया। तो इसलिए अगर आप भक्तिवेदांत रिसर्च सेंटर कलकत्ता में जाओगे तो वहाँ पर एक अंग्रेज स्कॉलर 1796 में पहला भगवद गीता इंग्लिश में अनुवाद हुआ, उसकी कॉपी हमारे पास है बीआरसी कोलकाता में, मतलब जो ओरिजिनल नहीं उसका बाद में जो कॉपी हुआ वापस 1870 या 1880 में उसको प्रकाशित किया फिर से, वो कॉपी है। सो 1797 में प्रथम बार किसी ने फिर गीता क्या है, संस्कृत क्या है, उसको संस्कृत को समझकर संस्कृत का स्कॉलर बनने की प्रक्रिया आरंभ की भाषा के दृष्टिकोण से, लेकिन फिर भी वो आउटसाइडर ही रहे। बट दे क्लेम्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदुइज्म लाइक दिस। तो ये आउटसाइडर इनसाइडर पर्सपेक्टिव हुआ, उसमें भी पूरी स्पष्टता हमारे सनातन धर्म के लोगों के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुई। अर्थात इतने हजारों वर्षों तक जो भारत पूरे विश्व के लिए धर्म और आध्यात्म का केंद्र रहा, हम पूरे विश्व के लिए धर्म और आध्यात्म के लिए नायक रहे, लेकिन अचानक अंग्रेज पूरे विश्व भर में अंग्रेजी भाषा को प्रचलित करके इस तरह एक परिस्थिति खड़ी कर दी कि लोग हमारे संस्कृत भाषा को समझ नहीं पा रहे थे, और धीरे धीरे अंग्रेजों ने जो भारत के जितने ट्रेडिशनल गुरुकुल सिस्टम था उसको धीरे धीरे बंद करके ये पारंपरिक ज्ञान और पद्धति को आगे बढ़ाने की प्रणाली में बहुत बड़ी बाधा कर दी। तो उस समय ठाकुर भक्ति विनोद का जन्म हुआ, और जन्म के पश्चात और प्रारंभिक लीला में उन्होंने ऐसे कोई डायरेक्ट भागवत के प्रति प्रेम वगैरह नहीं दिखाया, लेकिन आरंभ से ही वो अनेक अलग उपन्यास लिखना आरंभ किए, और फिर जब उनको श्रीमद् भागवत उनके पास पड़ी तो श्रीमद् भागवत को पढ़कर उनके हृदय में बड़ी प्रेरणा जागृत हुई, और तब श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में जब उन्होंने पढ़ा तो वो समझ गए कि मेरा जीवन इसके लिए समर्पित होना चाहिए। सो दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। तो इसलिए उनको 11 वर्ष लगे एक चैतन्य चरितामृत का बोनोफाइड कॉपी ढूंढने में, और फिर जब चैतन्य चरितामृत का उनका कॉपी प्राप्त हुआ तब उन्होंने इस बात को भी समझा कि अंग्रेज सरकार का बोलबाला बढ़ चुका है और पूरे बंगाल में भी लोग अंग्रेजी के प्रभाव में आ रहे हैं, और इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो पृथ्वी आचे पृथ्वी चाचे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम ये कहा, तो वो ठाकुर भक्ति विनोद थे जो प्रथम बार इस श्लोक को गहराई से समझने का प्रयास किए कि पृथ्वी ते आछे ज्योत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार, अगर हर नगर हर ग्राम में प्रचार होना हो तो उसके लिए प्रणाली क्या हो सकती है, उसके लिए भाषा कौन सी होगी। तब उस समय की ऐतिहासिक राजनैतिक वैश्विक परिस्थिति को देखकर वो समझ गए कि अंग्रेज विश्व में छाए हुए हैं, और अगर हमको महाप्रभु के इस ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाना हो तो अब तक गौड़ीय संप्रदाय का जो उद्दीप्त ज्ञान जो एक खजाने की भांति है, जो आज आप वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट फोगला आश्रम के आगे आप जाओ वहाँ पर सारे ओरिजिनल मैनुस्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं षड गोस्वामियों के और बलदेव विद्याभूषण के चक्रवर्ती पाद के लिखे हुए जो ओरिजिनल मैनुस्क्रिप्ट्स सब संस्कृत और कुछ बंगाली में हैं, और ठाकुर भक्ति विनोद चाहे तो कह सकते थे चलो हम बंगाली में पूरे ब्रह्मांड को पूरे विश्व को ये ज्ञान देंगे, बोले नहीं हम भले बंगाली भाषा में बड़े निपुण हैं लेकिन विश्व के सामने ये ज्ञान प्रस्तुत होना हो तो ये अंग्रेजी भाषा में ही प्रस्तुत हो सकता है। और तब ठाकुर भक्ति विनोद ने गौड़ीय संप्रदाय के इस वैश्विक प्रचार प्रसार को एक दिशा दी, और जो दिशा उन्होंने पकड़ी, क्योंकि तब तक संस्कृत और बंगाली के ऊपर ही गौड़ीय संप्रदाय चला जा रहा था, सीधे हाईवे पे चलते चले जा रहे थे गौड़ीय संप्रदाय संस्कृत और बंगाली के बलबूते पर, और संस्कृत और बंगाली के विद्वत्ता के विषय में गौड़ीय संप्रदाय में कोई प्रश्न ही नहीं था कि कोई उसको तोड़ सके। जीव गोस्वामी ने जिस प्रकार का व्याकरण प्रस्तुत किया था कोई उसका तोड़ पूरे विश्व में नहीं, लेकिन वो समझे कि प्रचार का अर्थ ये नहीं कि हमारा संदेश कितना महान है महान नहीं, विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। कोई है क्या हमारे ऐसा अच्छा जो संस्कृत और बंगाली में इतने ग्रंथों को लिख पाया हो? एक इस दिशा में सोच विचार चल सकता था, पैटिंग वन सेल्फ ऑन वंस बैक, अपनी ही शाबाशी करते हुए, क्या ग्रंथ हमारे संप्रदाय में है, क्या संदेश हमारे संप्रदाय का है, पूरे विश्व में इसके सामने कोई जोड़ ही नहीं। ऐसा बोलते रहे तो हम अकेले ही बोलते रहेंगे, क्योंकि सामने वाले की समझ में भी कुछ आना चाहिए। तो इसलिए प्रचार का अर्थ ये नहीं कि हम अभिमान पूर्ण स्वर से लोगों के सामने अपने संदेश की महानता को प्रकट करें, नहीं। प्रचार का अर्थ है कि चाहे हमारा संदेश कितना ही महान क्यों न हो, हम दूसरों के समझने योग्य उनके स्तर पर उतरें और उनके समझने योग्य भाषा में उनके सामने प्रस्तुत करें। तो आज हम लोग अंग्रेजी बड़े आराम से बोलते हैं और ये एक सामाजिक अंग हो गया है, लेकिन 1850 में, 1857 में ये बात नहीं थी। और 1857 में जब जो झांसी में म्यूटिनी पहला हुआ, तो अंग्रेजों के विरोध में इतना कुछ भावना उत्पन्न हुआ, ऐसे परिवेश में ठाकुर भक्ति विनोद का सोचना कि नहीं, अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करके वहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन के अंग्रेजी भाषा में हम गौड़ीय संप्रदाय को प्रस्तुत करें, ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी सोच थी। क्योंकि उस समय सामाजिक परिवेश राजनीतिक वायु से प्रवाहित होकर अंग्रेजों के विरोध की ओर चल रहा था, लेकिन ऐसे विरोधी परिवेश में ठाकुर भक्ति विनोद अंग्रेज सरकार में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनकर उनके यहाँ नौकरी करते हुए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, अपना कठोर भजन करते हुए 75 ग्रंथों का उन्होंने लेख लिखा, 75 बुक्स जो उन्होंने लिखा, पूरा मैं लिस्ट यहाँ पर लेके आया हूँ 75 बुक्स का। बोले पढ़ तो नहीं सकते, कम से कम लिस्ट तो अपन देख लेते हैं। तो ठाकुर भक्ति विनोद ने जो एक जीवन काल में किया, इसको लेकर तो कई यूनिवर्सिटी खड़े हो सकते हैं, इतना कुछ लिख डाला, और वो भी 11 बच्चों को संभालते हुए गृहस्थ आश्रम में। तो इसलिए ये जो चौथा मैंने बताया, इनसाइडर इनसाइडर, आउटसाइडर आउटसाइडर, आउटसाइडर इनसाइडर, और चौथा द इनसाइडर आउटसाइडर पैराडाइम, अर्थात जो सनातन धर्म और जो गौड़ीय समाज में जन्मा हो, जो बंगाल का, बंगाल की मिट्टी का जन्मा हुआ व्यक्ति हो, उससे श्रेष्ठ बंगाल के वैष्णव संप्रदाय को कौन समझ सकता है? सो ही वॉज ट्रूली एन इनसाइडर ऑफ बंगाल। लेकिन उन्होंने विचार किया कि हमें इस ज्ञान को बाहर की दुनिया को प्रस्तुत करना है। सो ही वॉज द फर्स्ट इनसाइडर आउटसाइडर ऑफ गौड़ीय संप्रदाय। ही वॉज प्रेजेंटिंग द इनसाइडर आउटसाइडर परस्पेक्टिव, कि गौड़ीय संप्रदाय का ज्ञान बाहर के लोगों को किस तरह प्रस्तुत करना। तो इसलिए जो भी इस्कॉन में हम इस्कॉन के संदेश को दुनिया तक पहुंचाना चाहें, वो ठाकुर भक्ति विनोद के दिए गए उदाहरण के आधार पर ही हम कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने जो किया, उन्होंने एक दिशा दी और उस दिशा को आगे सरस्वती ठाकुर लेके चले, फिर उसको प्रभुपाद जी एक वैश्विक रूप लेके गए। बट द इनसाइडर आउटसाइडर टर्न वॉज टेकन बाय ठाकुर भक्ति विनोद। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि अ ग्रैंड फादर इज मोर मर्सीफुल देन द फादर। द्रौपदी जी यूरोप में थे, शायद स्विट्जरलैंड में या जर्मनी में, बहुत ठंडी थी और प्रभुपाद जी ने कार्तिकेय प्रभु उनके एक शिष्य थे उनको कहा कि मेरे लिए कुछ हलवा बनाओ। तो कार्तिकेय प्रभु जाके अंदर जो था देखा क्या था, लापसी था, तो उसका एक हलवा बना के लेके आ गए। तो प्रभुपाद ने देखा और कह रहे मैंने तुमको हलवा कहा था सूजी का होना चाहिए, ये क्या लापसी का बना, लेके जाओ। प्रभुपाद ने रिजेक्ट कर दिया। तो कार्तिकेय प्रभु बहुत दुखी हो गए बेचारे और वो हलवा को लेके जाके अंदर गए, किचन में खड़े थे कि प्रभुपाद जी ने रिजेक्ट कर दिया मेरी सेवा को। तब अचानक सामने एक फोटो थी भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की। तो फिर उनको याद आया प्रभुपाद ने कहा है ग्रैंडफादर इज मोर मर्सीफुल देन फादर। तो सरस्वती ठाकुर को वो जो था लापसी बनाया था वो देखकर खड़े हो गए और प्रार्थना करने लगे। उन्होंने तो स्वीकार नहीं किया, कम से कम आप स्वीकार कर लो। और ऐसा जैसे ही कहा तुरंत प्रभुपाद की आवाज आई। प्रभुपाद ने कहा कार्तिकेय ब्रिंग दैट हलवा आउटसाइड। तो प्रभुपाद तुरंत उसको लिए और पूरा जो बनाया था खत्म कर दिया। तो लिखते हैं कि उस दिन मुझे कन्विंस हो गया ग्रैंडफादर इज मोर मर्सीफुल देन फादर। व्हाट टू स्पीक ऑफ ग्रेट ग्रैंडफादर, और हमारे लिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद वास्तव में इतने ग्रंथों को प्रस्तुत किए उस समय जो एक ऐतिहासिक घटना थी। तो इसके विषय में कुछ प्रस्तुत करने के पहले सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो ठाकुर भक्ति विनोद का पहला बुक था जो उन्होंने प्रस्तुत किया 1856 में, वो बुक थी बलीद ए रजिस्ट्री, और वो बुक कौन सी भाषा में थी, उर्दू में। तो ठाकुर भक्ति विनोद उर्दू के भी बड़े स्कॉलर थे, ठाकुर भक्ति विनोद पर्शियन के भी स्कॉलर थे, संस्कृत के भी थे, बंगाली के भी थे। तो यहां पे वर्णन आ रहा है कि 1868 में उन्होंने स्टार्ट किया सच्चिदानंद प्रेमालंकार, जो उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में पढ़ने के पश्चात तुरंत उनके मन में भाव उत्पन्न हो गया और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के विषय में कैसे पूरे विश्व भर में महाप्रभु के मिशन को फैलाएंगे ये 1868 में प्रस्तुत किया। 1869 में उन्होंने द भागवत इट्स फिलॉसफी एथिक्स एंड थियोलॉजी, दीनजपुर नाम के स्थान में उन्होंने लेक्चर प्रस्तुत किया, उसके ऊपर उन्होंने भागवत क्या है, महाप्रभु ने भागवत को किस तरह प्रस्तुत किया। अब आप देखो इसी को लेकर प्रभुपाद जी ने अपने बीबीटी के भागवतम में स्टार्टिंग में दिया है इंट्रोडक्शन, फॉलोइंग इन फुटस्टेप्स ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर, हाउ लॉर्ड चैतन्य प्रीच द भागवतम, और फिर संबंध अभिधेय प्रयोजन इत्यादि। फिर 1870 मतलब एवरेज देखो तो साल में लगभग मिनिमम वन बुक निकाल रहे थे, है कि नहीं। जैसे हम लोग एक साल में एक बार यात्रा जाके आते हैं, वैसे साल में एक बुक वो ऐसे निकाल देते थे। 1870 में गर्भ स्तोत्र व्याख्या, जो दशम स्कंध में गर्भ स्तुति है उसके ऊपर उन्होंने पूरी टिप्पणी की, और 1871 उन्होंने रिफ्लेक्शंस करके कई इंग्लिश में पोएम्स लिखे। फिर 1871 में ही उन्होंने सबसे प्रसिद्ध ठाकुर हरिदास को लेकर 10 इंग्लिश में पोएम्स लिखे, है कि नहीं। और उसमें सबसे फेमस कौन सा वाला है, नहीं उसमें वो जो फेमस दोज हु दैट वैष्णवास डाई द वैष्णवास दो ही रीजन्स इल हु सेज वैष्णवास डाई द वैष्णवास लिव इन साउंड। तो वो जो श्लोक था वो 1871 में लिखा गया है उस समय, और ये समाधि हरिदास ठाकुर के समाधि में उसको अंकित किया गया। और 1871 में ही, क्योंकि तब तक एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनका ड्यूटी स्टार्ट हो गया था अलग अलग स्थानों में उड़ीसा में, तो एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनको बहुत चोट लगती थी देखकर कि कितने गलत काम हो रहे हैं धर्म के नाम पर अलग अलग मठों में। तो उन्होंने द अखाड़ास इन पुरी, जगन्नाथपुरी के अखाड़ा ऐसा नाम के से बुक लिखा, लेकिन उसमें केवल उस अखाड़ों में क्या क्या घोटाले हो रहे थे वो पूरा एक्सपोज किया उसमें। फिर उन्होंने 1871 में सारग्राही नाम की बुक लिखी और फिर मैरिज सिस्टम ऑफ बंगाल के ऊपर लिखा, और फिर उन्होंने संपूर्ण उनका जो परिवार था दत्त परिवार, केदारनाथ दत्त नाम था, उस परिवार की वंशावली भी लिखी 1876 में। 1881 में सबसे फेमस उनका जो ग्रंथ था जिसका नाम था कल्याण कल्पतरु, जिसमें 63 सॉन्ग्स हैं वैष्णव सॉन्ग्स, और कह रहे हैं कि ये मैं वास्तव में गोलोक वृंदावन से साक्षात एक कल्प वृक्ष लेके आया हूँ। इस कल्याण कल्पतरु में 3 विभाग किए, पहला है उपदेश स्पिरिचुअल एडवाइस, दूसरा है उपलब्धि कि अगर ये एडवाइस फॉलो करोगे तो क्या आप उपलब्ध करोगे आध्यात्मिक जीवन में, और तीसरा है उच्छ्वास अर्थात दिव्य आनंद की अनुभूति। और फिर 1885 प्रभु ठाकुर भक्ति विनोद ने बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा विश्व वैष्णव कल्पतवी, द डिजायर ट्री ऑफ द इंटरनेशनल वैष्णवास। अब देखिए उस समय केवल बंगाल में कुछ चल रहा है, उड़ीसा में चल रहा है, लेकिन उन्होंने उस समय लिख दिया कि भाई हम एक ऐसे आध्यात्मिक परंपरा आरंभ करने वाले हैं जो पूरे विश्व भर में फैलेगा। तो इसका इंग्लिश में अनुवाद आता है द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वैष्णवास। इसका ब्लूप्रिंट एक छोटे बुकलेट में लिख दिया जिसका नाम था विश्व वैष्णव कल्पतवी, पब्लिश्ड इन 1885। फिर सन मोदन भाष्यम बड़ा महत्वपूर्ण है, ये सभी भक्तों को पढ़ना चाहिए। यह है शिक्षाष्टकम के ऊपर उनकी टिप्पणी, कमेंट्री ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर ऑन शिक्षाष्टकम, इसके कॉपीज अवेलेबल हैं इंग्लिश में। फिर दशोपनिषद चूर्णिका की 108 उपनिषद में से 10 उपनिषद की एक झलक। फिर 1886 में लिखा भावावली कि रस शास्त्र के ऊपर विभिन्न आचार्यों ने क्या क्या लिखा है इसके ऊपर ये पूरा ग्रंथ था। फिर 1886 में बड़ा महत्वपूर्ण उन्होंने ग्रंथ लिखा विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के ऊपर, उनका बलदेव विद्याभूषण का जो कमेंट्री था उसके ऊपर उन्होंने भी ओरिजिनली दिस प्रेयर वाज पब्लिश्ड बाय ठाकुर अलोंग विद संस्कृत कमेंट्री ऑफ बलदेव विद्याभूषण एंटाइटल्ड नामार्थ सुधा। तो उन्होंने ये बलदेव विद्याभूषण की कमेंट्री को इसके साथ पब्लिश किया विष्णु सहस्रनाम को लेके। 1887 में आपने सुना होगा चैतन्य चरितामृत के कमेंट्री में बड़ा फेमस बुक आता है गुणराज खान ने लिखा हुआ जिसका नाम है श्री कृष्ण विजय, और महाप्रभु भी बोलते हैं नंद नंदन मोर प्राण उसमें लिखा है। और इसलिए ये चैतन्य महाप्रभु का अगर आपको पूछा जाए व्हाट वाज चैतन्य महाप्रभुज फेवरेट बुक, दैट वाज श्री कृष्ण विजय बाय गुणराज खान। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि उसको उन्होंने बंगाली में अनुवाद किया। फिर 1887 में बहुत इम्पॉर्टेंट बुक पब्लिश किया क्योंकि उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु के विषय में लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि ये कृष्ण है कि नहीं। तो चैतन्य उपनिषद इन्होंने पब्लिश किया और उसमें अथर्व वेद से और 19 श्लोक केवल हैं जो महाप्रभु को भगवान के रूप में स्थापित करते हैं। उसके साथ उन्होंने अपना संस्कृत कमेंट्री भी दिया और साथ साथ में मधुसूदन दास के बंगाली अनुवाद को भी प्रस्तुत किया। फिर एक और, मैं हर एक का तो नहीं पढ़ रहा हूँ, जो जो मेन मेन है उसी को पढ़ रहा हूँ। 1890 में बहुत इम्पॉर्टेंट बुक पब्लिश किया जिसका नाम है आमनाय सूत्रम। आमनाय सूत्रम अर्थात कोड्स ऑफ वैदिक नॉलेज, जो सारे 108 उपनिषद से लेकर उसके सार को 130 श्लोकों में प्रस्तुत कर दिया। तो इतना मतलब हम लोगों के लिए काम इजी कर दिया कि पूरा उपनिषद बैठ के पढ़ते मत रहो, ये 130 में आपका पूरा आ गया। और उसके 16 अध्याय उन्होंने तैयार किए और उसमें सब कुछ विस्तृत रूप से वर्णन किया। तो इसका उन्होंने बंगाली अनुवाद भी दिया जिसका नाम है लघु भाष्य। उसके बाद बलदेव विद्याभूषण का सिद्धार्थ दर्पणम भी उन्होंने 1890 में प्रस्तुत किया और हरिनाम को लेके कई कई उन्होंने ग्रंथ प्रस्तुत किए। और 1893 में श्रीवास ठाकुर के घर पर जब महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, श्रीवास ठाकुर के पुत्र की मृत्यु हो गई, उसको लेकर उन्होंने ग्रंथ प्रस्तुत किया शोक सतन। और 1893 में गीत माला प्रस्तुत किया जिसमें 80 जो वैष्णव सॉन्ग उन्होंने लिखे 5 विभिन्न विभाग में। और जो रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि में जो भाव प्रस्तुत किया है, उस भाव और रस को लेकर उन्होंने ये गीत प्रस्तुत किए। फिर ठाकुर भक्त विनोद ने देखा कि 1893 में जो देख रहा हूँ पूरे बंगाल में लोग ओरिजिनल चैतन्य चरितामृत और ओरिजिनल भागवत से अधिक बौल में, बौल लोगों ने संगीत को दूसरी दिशा में लेके चले गए थे। तो औला बौला करता भाजा इस तरह से बहुत सारे अपसंप्रदाय तैयार हुए थे। तो उस समय के बिल्कुल लोकप्रिय जो तथाकथित कहने के लिए आध्यात्मिक थे लेकिन वास्तव में भौतिकवादी थे, उनका नाम था बौल। तो जो रस और सिद्धांत को भलीभांति नहीं जानता वो पकड़ नहीं पाता कि एक्चुअली डिविएशन है, क्योंकि वो लोग नंबर वन संगीतकार थे और अपने संगीत के आकर्षण से लोग को पकड़ते थे। लेकिन उनका लिरिक्स देखो, उनके वर्डिंग्स देखो, तो सब ऑफ था। तो ठाकुर भक्ति विनोद ने कहा अगर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना है तो उन्होंने भी बौल संगीत नाम के उसी प्रकार के गीत लिखना स्टार्ट किया। संप्रदाय और तत्व के हिसाब से सही था लेकिन स्टाइल वैसा था, और उन्होंने अपना नाम भी चेंज करके लिख दिया चांद बौल। तो चांद बौल नाम से वो बहुत सारे ऐसे गीत प्रस्तुत करने लगे, बड़े लोकप्रिय हो गए और लोग बिल्कुल ढूंढने लगे चांद बौल कौन है, चांद बौल कौन है। और धीरे धीरे करके कई लोगों को वो डायरेक्ट गौड़िया लाइन में लेके आए। तो ब्रिज प्रीचिंग उनका उस समय का जो था चांद बौल के नाम पे। फिर 1893 में दलालेर गीत और फिर तत्व मुक्तावली, फिर ऐसे ऐसे, हाँ, रामानुज संप्रदाय को लेकर उन्होंने रामानुज उपदेश 1896 में पब्लिश किया और 1896 में अर्थ पंचक जो कि पिल्ले लोकाचार्य को और रामानुजाचार्य के बीच में जो रामायण के ऊपर जो 5 उनके मेन पॉइंट्स हैं उनके संप्रदाय के, ठाकुर भक्ति विनोद ने बराबर उसको प्रस्तुत किया। तो हम देखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर, सरस्वती ठाकुर और शिला प्रभुपाद, ये तीनों ने 4 संप्रदाय में, दूसरे संप्रदायों में से सबसे अधिक अगर टिप्पणी की तो श्री संप्रदाय से, हमारे संप्रदाय को छोड़कर लिया तो श्री संप्रदाय से। फिर इस तरह उन्होंने कई कई प्रस्तुत किए हरिनाम चिंतामणि और संकल्प कल्पद्रुमा पद्म पुराण भजन रहस्य और ऐसा कहते हुए करते हुए प्रेम विवर्त जगदानंद पंडित का और अंतिम उनका बुक था 75th बुक स्वनियम द्वादशकम 12 वर्सेस ऑफ सेल्फ इम्पोस्ड वाओ। तो 1907 से लेके 1915-16 जब या 14 जब उनका तिरोभाव हुआ तब तक वो ये 7-8 वर्ष जगन्नाथपुरी में अपने ही भजन कुटीर में पूरी तरह लगे हुए थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो स्वनियम दशकम लिखा उसके आधार पर वो ये अंतिम 7-8 वर्ष एकांत में निकाले केवल कृष्ण का ध्यान करते हुए। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि ठाकुर भक्तिविनोद लगभग जब ब्रिटिश सरकार में नौकरी कर रहे थे उसी समय उनकी इच्छा हुई कि मैं वृंदावन जाऊं और जाने के लिए वो नवद्वीप से निकल गए थे और दूसरे जगह उनका पोस्टिंग भी हो गया था। और उनका जब पोस्टिंग हुआ श्रीरामपुर में तब उनको रात में सपना आया और सपने में महाप्रभु आके बोले नहीं आपको बहुत बड़ा कार्य करना है, मेरा जन्म स्थान आपको प्रकट करना है, वापस पोस्टिंग लो। बोले यार वापस तो हमको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, लेकिन बहुत प्रयत्न के बाद उनको वापस ट्रांसफ़र मिल गया, किसी के साथ पोस्ट एक्सचेंज हुआ। वो आए और नवद्वीप में आकर जब रानी धर्मशाला में रुके हुए थे रात्रि के समय अचानक गंगा के उस तरफ से उनको बहुत बड़ा प्रकाश दिखाई पड़ा। सुबह वो वहाँ पर गए और बहुत सारे तुलसी वहाँ पर देखा और उनको लगा कि यही महाप्रभु का जन्म स्थान है। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को वहाँ लेके आए, बाबा जी महाराज उस टोकरी से ऊपर छलांग लगाए और ज़ोर से बोले एतो निमाय जन्मभूमि। और तब उसको जो है सिद्ध किया कि ये चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो ठाकुर भक्ति विनोद महाप्रभु के जन्म स्थान को प्रकाशित करने के लिए वास्तव में निमित्त बने। बिशकसेन नाम का व्यक्ति अपने आप को महाविष्णु बता रहा था, उसके साथ साथ उसने एक ब्रह्मा और शिव को भी खड़ा कर दिया था। तो तीनों लोग जबरदस्त बिजनेस कर रहे थे और उस समय जो वहाँ के इंचार्ज थे ब्रिटिश रावेनशॉ, उन्होंने ठाकुर भक्ति विनोद को कार्य दिया कि इसको अरेस्ट करो। तो ठाकुर भक्ति विनोद 200-300 आर्म्ड पुलिस को लेकर और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को लेकर वहाँ पर गए और बिशकसेन ने उनको बहुत धमकी दी कि आप मुझे गिरफ्तार करने का प्रयास करोगे तो बहुत बुरा होगा। लेकिन ठाकुर भक्ति विनोद सुनने के लिए तैयार नहीं और उन्होंने उनको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके लेके चले और जेल में डाला और वहाँ पर खुली सभा में कोर्ट में 17 दिन तक ये केस चला। हजारों की संख्या में लोग आवाज़ उठा रहे थे, अंग्रेज सरकार का विरोध कर रहे थे, ठाकुर भक्ति विनोद की हाय हाय कर रहे थे, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए। यहाँ तक कि एक दिन बिशकसेन ने यह भी कहा कि आप घर पे जाके देखो क्या हाल है तुम्हारा। घर पे गया तो मालूम पड़ा उसकी पुत्री मृत्यु के निकट आ गई थी इसके काले जादू के परिणाम से। उनकी पत्नी प्रार्थना करने लगी आप छोड़ दो उसको, उसके चक्कर में हमारा परिवार नष्ट होगा। ठाकुर भक्ति विनोद ने कहा जो अपने आप को भगवान कहलाएगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा भले मैं मर जाऊं। और फिर अगले दिन तक वो कुछ उसकी पुत्री ठीक हुई। अंतिम दिन जब निर्णय लिखना था, वर्डिक लिखना था, उस दिन बिशकसेन ने ठाकुर भक्ति विनोद को कहा कि तुमको ऐसी अवस्था में कर दूंगा तुम लिखने के लायक नहीं रहोगे। और उस रात्रि को जब ठाकुर भक्ति विनोद घर पहुंचे तो उनके छाती में भयंकर दर्द हुआ, रात भर इतनी दर्द हुई लगा कि वो जीवित नहीं बचेंगे, उठ नहीं पा रहे थे। लेकिन बड़ा कठिनाई से अपने आप को घसीट घसीट कर कोर्ट में आए, उनको उठा के लाया गया। ठाकुर भक्ति विनोद ने लड़खड़ाते हुए हाथों से वर्डिक्ट लिखा, जेल की सजा सुनवाई और तत्पश्चात जब बिशकसेन को पकड़ के ले जा रहे थे अचानक एक अंग्रेज जो वहाँ पर ऑफिसर थे डॉक्टर थे उनको लगा कि शायद इनकी सारी शक्ति इनके बालों में है, तो जो झाड़ को काटते हैं वो वाले औजार से उसके बाल काट दिए, तो बिशकसेन की सारी शक्ति समाप्त हो गई और ठाकुर भक्ति विनोद फिर स्वस्थ हो गए और बिशकसेन ने विष खाकर वहीं पर अपना प्राण त्याग दिया कुछ दिनों में जेल के अंदर। फिर ठाकुर भक्ति विनोद ब्रह्मा और शिवा को पकड़ने गए, वो पकड़ने के आ गए पहले ही वो लोग सरेंडर हो गए, वो बोले नहीं हम तो उनके बहकावे में आ गए थे, हम ना तो उनको भगवान मानते हैं ना हम, हमारे लिए जगन्नाथ ही भगवान है। तो इस तरह और भी वहाँ पर कोई अपने आप को बलराम बता रहा था, कोई और अपने आप को क्या बता रहा था, उन सभी को ठीक किया ठाकुर भक्ति विनोद ने। और अंग्रेज सरकार बड़ी उनसे प्रभावित थी, क्योंकि एक व्यक्ति इतना कैसे कर सकता है। उनकी दिनचर्या ऐसी थी कि रात्रि को 8 से 10 बजे 2 घंटा सोते थे। उनका स्केड्यूल सुनो, क्योंकि आपको लगेगा 11 बच्चे रख के 75 बुक कैसे लिख सकता है कोई। केवल रात को 2 घंटा सोते थे, 10 बजे से रात को सुबह 4 बजे तक वो निरंतर वैष्णव ग्रंथ लिखते थे। फिर 4 से 4:30 बजे आधा घंटा फिर सोते थे, है कि नहीं। तो हम लोग रात भर सो के फिर 4 से 4:30 और सोएंगे, लेकिन वो रात भर जाग कर 4 से 4:30 सोते थे। फिर 7 से 7:30 फिर 4:30 से 7 बजे तक जप करते थे। फिर 7 से 7:30 कुछ मेल्स वगैरह वो लोग आंसर करते हैं। फिर सुबह 8:30 बजे लोग उनसे मिलने आते हैं। फिर वो कुछ देर चलते चलते विचार करते, मनन करते। फिर 9:30 से 10:15 मिनट फिर विश्राम करते। फिर ब्रेकफास्ट लेते थे, 2 चपाती, कुछ फ्रूट और आधा ग्लास मिल्क। फिर 9:55 को बराबर यूनिफॉर्म पहन के पहुँचते थे। 10 बजे कोर्ट लगती थी, 5 मिनट में कोर्ट पहुँच जाते थे। 10 बजे से 1 बजे के बीच 50 केस सुनते थे। बाकी लोगों को, जज लोगों को आधा घंटा एक केस में लगता था, इनको 5 मिनट लगता था। फिर 1 बजे घर आते, फिर 2 से 5 रहते, फिर रात को शाम को लौट के आके फिर 1-2 घंटा संस्कृत अनुवाद करते थे। और फिर रात को फिर कुछ चपाती और चावल और दूध लेके 8 बजे सो जाते थे। ये उनकी दिनचर्या थी। इस दिनचर्या के बदौलत उन्होंने इतना कुछ लिख डाला। और जो अंग्रेज उनके साथ काम करते थे वो बोले कि ही वॉज एक्सट्रीमली चैरिटेबल, हैड नो ग्रजेस, फ्रेंड ऑफ ऑल, ईगर टू बेनिडिक्ट, नेवर प्राउड, नेवर अटर्ड अ वर्ड टू इंज्योर अदर्स फीलिंग्स। इस तरह उन अंग्रेज, यहाँ तक कि एक अंग्रेज ऑफिसर जब ठाकुर भक्ति विनोद अपने महाप्रभु के जन्म स्थान के निर्माण के लिए घर घर जाकर 1-1 रुपये चंदा ले रहे थे, तब ये ब्रिटिश जो ऑफिसर रिटायर हो गए थे उनके पास कलकत्ता में आए राइटर्स बिल्डिंग में, तो वो ऑफिसर बोला हमारे क्रिश्चियनिटी में ऐसा कहा है कि मरने के पहले किसी के प्रति अपराध किया हो तो उसे क्षमा मांगना चाहिए। मैं एडमिट करना चाहता हूँ कि आप इतने एफिशिएंट थे कि आपकी उस एफिशिएंसी को देखकर, आपकी निपुणता को देखकर मेरे अंदर द्वेष आ गया और मैंने ब्रिटिश सरकार दिल्ली से आपको ट्रांसफ़र करके दूसरा कोई डिमोशन इमोशन करने का मैंने षड्यंत्र स्टार्ट किया था, लेकिन आपसे सरकार इतनी प्रभावित थी कि वो लोग मुझे ही चुप बिठा दिए। बोले यार अरे तू नालायक है, वो 10 लोगों का काम कर रहा है, तू क्या पॉलिटिक्स कर रहा है उसका, चुप। तो इसलिए मैंने प्रयास किया, वो विफल हो गया, लेकिन मैं क्षमा याचना करना चाहता हूँ, मुझे क्षमा करना। इस तरह तो हाँ, और उनको कई बार निमंत्रण आते थे, कुछ उस समय नाटक चलते थे, थिएटर मतलब फिल्म तो नहीं थे तो थिएटर चलता था, तो ठाकुर भक्ति विनोद बिल्कुल थिएटर के विरोध में थे। वो कहते थे अगर मैं जाऊँगा तो फिर लोगों को लगेगा ये अच्छा है, यहाँ पर तो सब प्रजल्प ही चलता है। तो एक डॉक्टर रमाकांत चक्रवर्ती ने आयोजित किया था और उस समय वहाँ की सबसे फेमस डांसर और एक्टर थी बंगाल की, जिसका नाम था श्रीमती बिनोदिनी। उस ड्रामा में उनको चैतन्य महाप्रभु का रोल उसको दिया, सबसे बड़ी उस समय की जो स्कैंडलस एक्ट्रेस को महाप्रभु का रोल दिया, और ठाकुर भक्ति विनोद चीफ गेस्ट करके बुलाया। तो ठाकुर भक्त उन्होंने तो सीधा मना किया, सब बोले अरे महाप्रभु का रोल है, बोले महाप्रभु का रोल है लेकिन ये महामाया एक्ट कर रही है तो हम उसका नहीं देखने जाएंगे। तो इस प्रकार उनका जो पंक्चुअलिटी था ये था जो देखकर लोग बिल्कुल आकर्षित हो गए। और तीन, उन्होंने भविष्यवाणी की, ऑल रिलीजन्स विल बी यूनाइटेड बाय महाप्रभुज टीचिंग्स, महाप्रभुज मैसेज विल गो वर्ल्ड वाइड, महाप्रभु का जो मिशन है पूरे विश्व भर में फैलेगा। और उनकी प्रार्थना थी कि एक दिन पूरे विश्व के अंग्रेज, फ्रेंच, जर्मन ये सभी लोग यहाँ महाप्रभु के अपने अपने शहरों में हाथ उठाकर मृदंग और करताल को लेकर बोलेंगे जय सच्चिदानंद गौर हरि। वो दिन कब आएगा? इस प्रकार ठाकुर भक्ति विनोद के मन में ये भावना थी, ये इच्छा थी। तो आइए आज उनके तिरुभाव के उपलक्ष पर हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि श्रील प्रभुपाद के इस मिशन में हमें भी कोई सुयोग्य सेवा करने का अवसर दें। और जिस प्रकार उन्होंने गौड़ीय इतिहास के प्रथम इनसाइडर आउटसाइडर बन के हमारे संप्रदाय के वास्तविक मार्मिक शिक्षा को बाहर की दुनिया को उनकी भाषा में सही प्रकार से समझा पाए, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो भी हमें ऐसी शक्ति दें कि हम भी इस जटिल गौड़ीय सिद्धांत को इस जगत के लोगों के सामने ठीक प्रकार से प्रस्तुत कर सकें और उनका हृदय परिवर्तित कर सकें। ठाकुर भक्ति विनोद की, सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौ प्रेमानंदे। पुष्पांजलि और आरती के लिए सब लोग खड़े हो जाते हैं।